जावेद साहब, ईद उल फितर जो है, इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे? आमतौर पर ईद की जो इब्तिदा होती थी वो किस तरह से करते थे आप?
कि ईद से मुतल्लिक कुछ चीज़ें तो वो हैं कि जो सुन्नत के तौर पर जारी कर दी गई हैं,
ठीक है,
यानी एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, उस वक्त आपको दो रकत नमाज पढ़नी है, उस नमाज के बारे में भी कुछ चीज़ें तय कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पर उस नमाज में कोई तकबीर नहीं होगी, इकामत नहीं होगी, वो तकबीर और इकामत के बगैर खड़ी हो जाएगी। जुमे की नमाज भी एक इज्तिमाई नमाज है, लेकिन उसमें आप खुतबा पहले देते हैं, इसमें खुतबा नमाज के बाद दिया जाएगा, एक बड़ा इज्तिमा है। औरतों को भी कहा गया वो उसमें शरीक हो, मर्दों को भी कहा गया उसमें शरीक हो, यानी ये गोया मुसलमानों का इज्तिमा है। इस मौके के ऊपर जो खुतबात दिए जाते हैं वो भी उसी तरह दो खुतबे हैं जिस तरह जुमे में दिए जाते हैं। इनमें भी तरतीब वही है कि यानी आप पहले खुतबे में जिक्रुल्लाह होना चाहिए, अल्लाह की याद दहानी होनी चाहिए, आखरत की याद दहानी होनी चाहिए, जिसको कुरान मजीद इंतजार कहता है कि लोगों को खबरदार किया जाए, बुनियादी मकसद वही है।
ठीक है,
जहाँ तक दूसरे खुतबे का ताल्लुक है, दुआएं। इसीलिए रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख्वातीन से कहा तो वो आएँ, तो ख्वातीन ने उज़र पेश किया कि हमें बाज़ ऐसी सूरत लाहिक हो जाती है बाज़ औक़ात जिसमें ये मुमकिन नहीं होता कि हम नमाज़ पढ़ें। तो आपने फरमाया कोई हरज की बात नहीं, तुम आ जाओ और दुआ में शरीक हो जाओ।
अच्छा,
वो दुआ यही है।
अच्छा।
हमारे यहाँ तो चूंकि हर चीज़ को उसकी हकीकत में नहीं समझा जाता, तो इस वजह से हम बाद में दुआएं करना शुरू कर देते हैं। दरअसल हाल है कि दूसरा खुतबा दुआएं ही के लिए मुकर्रर किया गया है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मौके पर दुआ करते थे, यानी खुतबे के दौरान में दुआएं करते थे। इज्तिमाई दुआएं मुतवज्जिहन लिलनास की जाती हैं, लोगों की तरफ रुख करके, और लोग उस पर आमीन कहते हैं, दुआ में शरीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो दीन की हैसियत से मुकर्रर कर दी गई।
ठीक है,
उसके बाद ज़ाहिर है लोग पूछ सकते हैं कि फिर बाकी दिन में हम क्या करें, तो आपको इजाज़त है, आप उसमें तफरी भी करें, आप अपने अज़्ज़ा से मिलें, आप खाएं पकाएं, आप, ये हमारा एक त्यौहार भी है। आपके इल्म में है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके लोगों से पूछा कि ये बहुत से जो त्यौहार तुम बनाते हो तो ये क्या है, तो जब लोगों ने बताया तो आपने फरमाया अल्लाह ने इनकी जगह तुम्हारे लिए दो मजहबी त्यौहार मुकर्रर कर दिए। एक तो गैर मजहबी त्यौहार होते हैं जैसे बाहर के त्यौहार हैं, जैसे हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं, ये गैर मजहबी त्यौहार है, लेकिन मजहब भी चूंकि एक तहजीब तख्लीक करता है तो उसके लिए दो त्यौहार मुकर्रर कर दिए गए। एक ईद उल फितर है, एक ईद उल अज़हा है। दोनों को के अंदर बड़ी मानवियत रखी गई है, यानी आपने गोया रमज़ान के रोज़े रखे, आपको अल्लाह ने तौफीक दी कि आप एक बड़ी इबादत करें, आपने कोशिश की कि आपके अंदर तकवा पैदा हो, उसके बाद आप अल्लाह के शुक्राने के तौर पर वह ईद मना रहे हैं। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, जैसे कि कुरान ने बयान किया, यानी ताकि तुम अल्लाह की तकबीर करो कि उसने हिदायत दी तुमको, और वो हिदायत मिली कुरान मजीद के ज़रिए से। कुरान के नज़ूल ही के महीना रमज़ान का महीना है, तो एक लिहाज से ये कुरान के नज़ूल की शुक्रगुजारी बन जाती है कि आप उस मौके पर दो रकतें पढ़ते हैं, कि इज्तिमाई नमाज का अहतमाम होता है और आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। आप अपने इमाम या अपने सरबराया, ये ईद की नमाज के लिए भी यही है कि ये सरबराह हुकूमत को या उसके मुकरर करदा किसी नुमाइंदे को पढ़ानी चाहिए, तो उसका खुतबा सुनते हैं, अल्लाह की याद दहानी करते हैं। ये चीज़ें तो मुकरर कर दी गई हैं। बाकी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आपको हक हासिल है कि आप उस मौके पर एक त्यौहार के तौर पर, जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि त्यौहार ही के तौर पर ईद उल अज़हा, यानी त्यौहारों ही का जिक्र हुआ, उसी के ज़ैल में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो त्यौहार तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो त्यौहार जाहिर है कि अपने अंदर एक तफरी का, खुशी का, बाहम मिलने का आपसे आप पहलू रखता है, उसके लिहाज से लोग इसको मनाते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों का अहतमाम करते हैं, जिनको आपका उसवा हसना कहना चाहिए, जाहिर है कि हम में से हर शख्स की निगाह इस जानिब उठती है कि वो मामला जिनमें आपने कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की उनको भी आप कैसे अंजाम देते थे। अल्लाह के पैगंबर की जो हैसियत है वो यही है कि हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो ये मालूम होता है कि आप उठते थे, उठकर आम तौर पर आप कोई एक खजूर ले लेते थे। ईद उल अज़हा के बारे में तो है कि उसमें ये कोशिश करते थे कुर्बानी का गोश्त ही लें, लेकिन इसमें कोई खजूर, कोई मीठी चीज़ ले ली है, उसके बाद आप चले जाते थे। ये ख्याल करते थे कि रास्ता भी तब्दील करके जाए, अल्लाह ताला की तकबीरें इसमें बुलंद की जाती हैं, यानी आप जब जा रहे होते हैं तो जाते वक्त भी, जब आ रहे होते हैं तो आते वक्त भी तकबीरात बुलंद होती है। आपके इलम में है कि ये तकबीरात खुतबे में भी बुलंद की जाती हैं, ये ईदगाह में भी बुलंद की जाती हैं, जब आप रुखसत हो रहे होते हैं उस वक्त भी बुलंद की जाती हैं। तो इस तरह गोया एक अमूमी फ़ज़ा पैदा हो जाती है تکبیر رب کی، اللہ کی بڑائی کا اظہار آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حمد اس کی ہے، شکر اس کا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی کیفیت ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے، راستہ بھی تبدیل کر کے جاتے تھے، اور راستے میں بھی یہ دیکھتے رہتے تھے کہ گرد و پیش میں وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں کہ کسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے، کسی کے پاس کوئی پہننے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے ہے، اس کے لیے کسی کو ترغیب دلانی ہے، کسی کو ساتھ بھی لے آتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ معمولات ہیں جو بڑے پاکیزہ معمولات کی حیثیت سے روایتوں میں بیان ہو گئے ہیں، لیکن جتنا حصہ دین ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے نماز کا اس طرح اہتمام کرنا ہے، خطبہ اس طرح دینا ہے، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کھائیں پئیں، اپنے اعزاء اقربا سے ملیں، اور ایک تہوار کی طرح اگر آپ اس کو منائیں تو دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔